महाकाव्यत्व पृष्ठ 54। यह मसनवी शैली पर लिखा हुआ महाकाव्य है। इसमें भारतीय महाकाव्य की विशेषताओं के साथ ही फारसी मसनवियों की विशेषताएं भी सम्मिलित हो गई हैं। यहाँ हम महाकाव्य संबंधी भारतीय शामी मान्यताओं के प्रकाश में यूसुफ जुलेखा का मूल्यांकन करेंगे। यूसुफ जुलेखा की कथा वस्तु महाकाव्य की शर्त तथा मसनवी शैली दोनों के ही अनुरूप है। महाकाव्यों की दृष्टि से इसकी कथा वस्तु को हम लोक प्रसिद्ध कह सकते हैं। यूसुफ जुलेखा की ये कथा अपनी लोक प्रसिद्धि के कारण ही अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, हिंदी, दक्षिणी हिंदी आदि अनेक भाषाओं में मिलती है। मसनवी की दृष्टि से यह कथा सफल कही जाएगी, क्योंकि मसनवियों के समान इसकी कथा प्रेम प्रधान है। भारतीय लक्षणों के अनुसार महाकाव्य में 8 से अधिक और 30 के कम सर्ग होने चाहिए। मसनवियों में सर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, अस्तु सर्ग विधान की दृष्टि से इसे महाकाव्य कहना अनुपयुक्त न होगा। सर्गों का नामकरण मसनवियों के ढंग पर किया गया है। प्रत्येक खंड का नाम कथा के प्रमुख पात्र या घटना के आधार पर रखा गया है, जैसे जुलेखा वर्णन खंड, स्वप्न खंड, जुलेखा विरह खंड, षड ऋतु वर्णन खंड, यूसुफ जुलेखा मिलन खंड आदि। इसमें सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन वाली बात नहीं पाई जाती। मसनवियों में इस नियम का पालन आवश्यक नहीं माना गया है, कदाचित इसलिए कवि ने छंद परिवर्तन नहीं किया। संपूर्ण महाकाव्य में प्रायः छंदों का एक क्रम में ही पालन किया गया है। 9 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। यह क्रम संपूर्ण कृति में बिना किसी परिवर्तन के अपनाया गया है। इस दृष्टि से यह कृति हिंदी की अन्य मसनवियों के अधिक नजदीक है। वस्तु संगठन की दृष्टि से यूसुफ जुलेखा कथा के दो खंड दिखाई पड़ते हैं, प्रथम आदिखंड और दूसरा उत्तरखंड। आदिखंड की कथा में काव्य तत्व और कल्पना का सामंजस्य अधिक दिखाई पड़ता है। इसमें कथा भाग गौड़ रह गया है। दूसरे खंड में कथा प्रमुख हो गई है। काव्य में दोनों खंडों को इस प्रकार बांधा गया है जिससे ये परस्पर अभिन्न लगते हैं। नाटक की अवस्था और संधियों के अनुरूप महाकाव्य में भी कार्य की 5 अवस्थाओं और 5 संधियों का निर्वाह आवश्यक होता है। कार्य की 5 अवस्थाओं के नाम आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फल आगम तथा उसकी संधियों के नाम मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वाह है। इन 5 अवस्थाओं में क्रमशः 5 संधियों का निबंधन होता है। यूसुफ जुलेखा कथा में इन अवस्थाओं और संधियों का संधान करते समय हम देखते हैं कि इस नायिका प्रधान प्रबंधात्मक काव्यकृति में फल की कामना और विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए फल प्राप्ति यूसुफ को नहीं जुलेखा को होती है। स्वप्न दर्शन में पहली बार जुलेखा द्वारा यूसुफ को देखना और उसके अंतस में यूसुफ के प्रति उत्सुकता का भाव जगना आरंभ नामक कार्य अवस्था और उसके अंतर्गत मुख संधि है। यूसुफ को पहली बार स्वप्न में देखने के बाद जब जुलेखा के हृदय में उसका नाम पता जानने की कामना उत्पन्न होती है और तीसरे स्वप्न में नाम पता ज्ञात हो जाने के बाद जब जुलेखा यूसुफ से विवाह करने का निश्चय करती है, तब प्रयत्न अवस्था और प्रतिमुख संधि का विधान होता है। इसी प्रकार वजीर से जुलेखा के विवाह और उसके रूप में अपने स्वप्न प्रेय को न पाकर उसके साथ दाम्पत्य जीवन के संबंध से विरत रहने, यूसुफ को गुलाम के रूप में खरीदवाने, उससे प्रणय याचना करने, उससे अपनी कामना पूर्ति न होते देख उसे जेल भिजवाने, पुनः राजा के सम्मुख जाकर अपने दोष को स्वीकार करने और उसके परिणाम स्वरूप घर से निष्कासित कर दिए जाने तथा एक लंबे समय तक यूसुफ के लिए भटकते रहने के कारण और समय में वार्धक्य को प्राप्त होने में नायिका को जिन सम विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है उसमें फल का एकांतिक निश्चय नहीं हो पाता, इसलिए यह कार्य प्राप्त्याशा अवस्था और उसके अंतर्गत गर्भ संधि का समावेश हुआ। नाविक की सहायता से जब जुलेखा को यूसुफ से मिलना निश्चित होता है और दोनों की भेंट होने पर जुलेखा अपनी व्यथा कथा यूसुफ को सुनाती है, यूसुफ उसे सुनकर करुणार्द्र होता है, तब जुलेखा को यूसुफ की प्राप्ति एकदम निश्चित हो जाती है। इसे नियतात्ती अवस्था और अवमर्श संधि के अंतर्गत रखा जा सकता है। जुलेखा का यूसुफ से विवाह होना फल आगम अवस्था और निर्वहन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार इस दृष्टि से भी यूसुफ जुलेखा का एक सफल महाकाव्य है। मंगलाचरण के दृष्टि से शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा का आरंभ मसनवियों की पद्धति पर किया है। उसमें एक आदि स्वरूप का वर्णन किया गया है और उसकी महान कर्तव्य कर्तृत्व शक्ति का स्मरण किया गया है। यह विशेषता भारतीय महाकाव्य के लक्षणों तथा फारसी मसनवियों दोनों दृष्टियों से रेखांकित करने योग्य है। मसनवियों के अनुकरण पर शाह वक्त के रूप में सुल्तान शाह आलम का वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से भी यह मसनवियों के अधिक समीप है। महाकाव्य का नामकरण कवि नायक अथवा वस्तु के आधार पर होना चाहिए। यूसुफ जुलेखा का नामकरण इसके नायक और नायिका के नाम पर हुआ है, अतः ग्रंथ का नामकरण उपयुक्त ही माना जाएगा। महाकाव्य का नायक देवोपम व्यक्ति अथवा उच्च कुल में उत्पन्न धीरोदात्त गुणों वाला व्यक्ति होता है। यूसुफ जुलेखा में यूसुफ के जीवन का सविस्तार वर्णन है। वही इसका नायक है जो धीरोदात्त गुणों से युक्त देवोपम व्यक्ति है। पर इस बात को सदैव ध्यान में रखना होगा कि यूसुफ जुलेखा एक नायिका प्रधान काव्य कृति है, जिसमें प्रारंभ से लेकर फल आगम तक की सभी अवस्थाओं में मुख्य पात्र की भूमिका में जुलेखा ही रही है। रस और भाव अभिव्यंजना की दृष्टि से यह महाकाव्य पूर्णतः सफल है। इसका अंगिरस श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक उद्घाटन करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। श्रृंगार के साथ ही इसमें भक्ति वात्सल्य करुण आदि रस भी मिलते हैं, परंतु ये गौण रूप से ही वर्णित है। भाव अभिव्यंजना की दृष्टि से ये काव्य पूर्णतः सफल है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यूसुफ जुलेखा मसनवी शैली पर लिखा गया एक सफल भारतीय महाकाव्य है। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और फारसी मसनवी में निरूपित महाकाव्य के प्रायः समस्त लक्षणों का निर्वाह हुआ है।